शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे परमाद्वैत विज्ञानं कृपया यो ददाति वै सोऽयं गुरुर्गुरु साक्षात् शिव एव न संशय शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति 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 ही।
यजुर्वेद के संहिता भाग के ईशावास्योपनिषद नामक 40वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस 40वें अध्याय में कुल 18 मंत्र हैं। इनमें से प्रथम दो मंत्र पूरे अध्याय के द्वारा प्रतिपाद्य जो अर्थ हैं उसका सूत्रात्मक रूप बताते हैं। संपूर्ण अध्याय तथा पूरा वेदार्थ यही है ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। प्रथम मंत्र ने ज्ञान निष्ठा का संक्षिप्त स्वरूप बताया, उसी की व्याख्या तृतीय मंत्र से अष्टम मंत्र तक हुई। वह मोक्ष का साक्षात साधन है ज्ञान निष्ठा, लेकिन ज्ञान को धारण करके रखने की शक्ति शुद्ध एवं विक्षेप रहित अंतःकरण में होती है। मलिन तथा विक्षिप्त अंतःकरण आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं सकता। ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक माना गया मल एवं विक्षेप को। तो जिनके चित्त में से मल और विक्षेप निवृत्त नहीं हो पाया उन्हें ईशावास्यम इदं सर्वम इस मंत्र से बताई गई ज्ञान निष्ठा प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसके लिए मल एवं विक्षेप की निवृत्ति करना आवश्यक है। तो मल विक्षेप निवृत्ति का साधन कर्म उपासनाएं हैं, और कोई साधक यदि मल एवं विक्षेप के निवर्तक कर्म एवं उपासना को साथ साथ कर लेता है तो उसके कर्म से मल नाम के दोष की निवृत्ति होगी, तो विक्षेप नाम का दोष निवृत्त होगा उपासना से। और यदि एक एक को अपनाएगा तो मात्र एक एक ही प्रतिबंधक निवृत्त होगा, और शास्त्र चाहता है कि दोनों प्रतिबंधक एक साथ निवृत्त हो। इस अभिप्राय से कुर्वन्येवेह कर्माणि, इस शास्त्र ने कर्मनिष्ठा का संक्षिप्त स्वरूप बताया और नवम मंत्र से उसका विस्तार से श्रुति प्रतिपादन कर रही है। तो कर्म तथा कार्य ब्रह्म की उपासना, इनका समुच्चय अनुष्ठान बताया गया ग्यारहवें मंत्र से, और चौदहवें मंत्र से बताया गया कार्य ब्रह्म एवं कारण ब्रह्म की उपाधि जो प्रकृति है, अविद्या है, उसकी उपासना का समुच्चय। जो कार्य ब्रह्म की उपासना है वह मनुष्य के अंदर विद्यमान जो अनैश्वर्य है, असामर्थ्य है, उसे निवृत्त करती है। अनैश्वर्य को ही चौदहवें मंत्र में मृत्यु शब्द से कहा गया, और उसकी निवृत्ति होती है कार्य ब्रह्म की उपासना करने से। कार्य ब्रह्म की उपासना से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, अनैश्वर्य चला जाता है। और कारण जो प्रकृति है उसकी उपासना करने से दुखों की निवृत्ति होती है, दुखाभाव हो जाता है, प्रकृति लय प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये कर्म समुचित कार्य ब्रह्म की उपासना का फल तो स्वाभाविक कर्म एवं स्वाभाविक चिंतन रूपी मृत्यु की निवृत्ति पूर्वक कार्य ब्रह्म की प्राप्ति ये बताया, और कार्य ब्रह्म की उपासना के साथ साथ प्रकृति की उपासना का फल प्रकृति लय बताया। चाहे आप कार्य ब्रह्म की प्राप्ति रूपी अमृतत्व को प्राप्त कर लो या प्रकृति लय रूपी अमृतत्व को प्राप्त कर लो, ये सारा का सारा जो कर्म उपासना का फल है ये संसार अंतःपाती है, और ये कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान करने वाले उपासकों को प्राप्त होता है जब इनकी प्राप्ति की कामना से ये कर्म उपासनाएं करते हैं और निष्काम भाव से करते हैं, तो उसका फल है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक मल एवं विक्षेप दोष की निवृत्ति। तो जो उपासक कर्म तथा कार्य ब्रह्म की उपासना का समुच्चय अनुष्ठान कर रहे हैं कार्य ब्रह्म की प्राप्ति की कामना से, कार्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ को प्राप्त करने की कामना से जो लोग कर्म एवं कार्य ब्रह्म की उपासना इन दोनों का समुच्चय अनुष्ठान करते हैं तो उन्हें कार्य ब्रह्म तो ब्रह्मलोक में रहता है हिरण्यगर्भ। ब्रह्मलोक जैसा ये पृथ्वी लोक है, जैसा स्वर्गलोक है, ऐसा ही एक ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक है इस संसार में पूर्ण विकसित लोक, उसमें विकास की कोई गुंजाइश नहीं है, पूर्ण विकास हो चुका है। ऐसा जो पूर्ण विकसित संसार में सर्वोत्कृष्ट लोक है उसे ब्रह्मलोक कहा जाता है, और उस ब्रह्मलोक के अधिपति हैं हिरण्यगर्भ, और उस हिरण्यगर्भ की प्राप्ति के लिए जिसने कर्म तथा कर्मानुष्ठान तथा कर्मानुष्ठान के साथ साथ हिरण्यगर्भ की अंग्रह उपासना की है, वे लोक उपासक जब उनका ये साधन परिपूर्ण हो जाता है, तब यदि मनुष्य शरीर छूट जाता है तो मनुष्य शरीर तो छूटेगा ही, इसकी निश्चित आयु समाप्त हो जाए, तो अभी ब्रह्मज्ञान तो उन्हें हुआ नहीं है, तो ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का तो उत्क्रमण नहीं होता और अज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण होता है, का मतलब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है अज्ञानियों का, ज्ञानी का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलता नहीं है। यही उस सूक्ष्म शरीर का अपने अपने कारणों में लय हो जाता है ब्रह्मज्ञानी के तो, और ब्रह्मज्ञानी तीनों शरीरों से रहित हो जाता है, इसलिए ब्रह्मज्ञानी के लिए तो कहा जाता है निर्वाण प्राप्त हुआ, ब्रह्मज्ञानी का तो निर्वाण होता है। निर्वाण का अर्थ है, निर्वाण में वान शब्द का अर्थ है तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और इन तीन शरीरों में से किसी न किसी शरीर के साथ तादात्म्य करके बने रहने का नाम है सवान रहना, वान से युक्त होकर के रहना, सशरीर रहना। और निर्वाण का अर्थ है इन शरीरों से रहित होकर के निरुपाधिक रूप में अवस्थित हो जाना। तो ब्रह्मज्ञानी का तो ब्रह्मज्ञान होते ही, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होते ही, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे के अनुसार, जन्म का हेतुभूत जो अज्ञान है, कामनाएं हैं और कर्म है, इन तीन से संसार में जन्म होता है। ये जन्म के हेतु तीनों के तीनों अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होते ही निवृत्त हो जाते हैं, ज्ञान इन तीनों को निवृत्त करता है। ज्ञान से केवल तीन प्रकार के कर्मों में से प्रारब्ध कर्म मात्र निवृत्त नहीं होता, संचित कर्म की निवृत्ति होती है, क्रियमान कर्म जो ज्ञानोत्तर काल में कर्म हो रहा है उसे क्रियमान कर्म कहा जाता है, उसका तो अलेप होता है, और संचित कर्म उसे कहा जाता है जो ज्ञान होने से पहले जन्मों में किया हुआ कर्म है लेकिन अभी फल नहीं भोग पाए, जिन कर्मों का ऐसे कर्मों को कहा जाता है संचित कर्म। और प्रारब्ध कर्म कहा जाता है पहले किए हुए कर्म में से इस जन्म में फल देने के लिए जो वो हमारे सामने आया हुआ कर्म है वो प्रारब्ध कर्म है। तो संचित कर्म की निवृत्ति हो गई, प्रारब्ध कर्म का तो भोग करके क्षय होता है ज्ञानी के। और तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत्से, यह छांदोग्य श्रुति बताती है कि ब्रह्मज्ञानी का प्रारब्ध भोग करके क्षीण होते ही ब्रह्मज्ञानी को निर्वाण प्राप्त होता है, विधेय कैवल्य प्राप्त होता है। भावी शरीर दिलाने का कोई निमित्त ब्रह्मज्ञानी में न होने से ब्रह्मज्ञानी के सूक्ष्म शरीर की अब ब्रह्मज्ञानी को आवश्यकता नहीं है। स्थूल शरीर को तो कहा जाता है भोगायतन, भोग का आश्रय, और सूक्ष्म शरीर होता है भोग का उपकरण। जब उसे और भोग कहते हैं कर्म का फलभूत सुख दुख के अनुभव को भोग कहा जाता है। तो ये जो कर्म का फलभूत सुख दुख का अनुभव है, रूपी भोग है, यह भोग ही ब्रह्मज्ञानी का अब भविष्य में होना नहीं है, क्योंकि भोग का निमित्तभूत जो कर्म था वह ज्ञान से निवृत्त हो गया। तो जब भोग ही नहीं होना है, ब्रह्मज्ञानी को सुख दुख की अनुभूति नहीं होनी है, तो सुख दुख की अनुभूति के लिए आवश्यक भोगायतन स्थूल शरीर और भोग का उपकरण सूक्ष्म शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो निमित्त कोई न होने के कारण स्थूल शरीर भी ब्रह्मज्ञानी का छूट ही जाता है, सूक्ष्म शरीर उसके अपने अपने कारणों में लीन हो जाता है, सूक्ष्म भूतों में, और अज्ञान तो ज्ञान होते ही निवृत्त हुआ कारण शरीर। इस प्रकार तीनों शरीरों से रहित हो जाता है, स्वरूप में अवस्थित होता है, परमात्म रूप बन जाता है। कौन? ब्रह्मज्ञानी। और जिसको ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ और मनुष्य शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ, ऐसे मनुष्यों के शरीरों का उत्क्रमण होगा, शरीर से प्राण निकलेंगे, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलेगा, और निकलेगा तो फिर वो कर्म फल भोगने के लिए जाएगा कहीं ना कहीं। 84 लाख प्रकार के शरीरों में से कोई न कोई शरीर जिसके पास अविद्या है, यानी स्वरूप का अज्ञान है, और कर्म बने हैं जिसके, और जिसके अंदर वासना है, उसे न चाहते हुए भी इस मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद में कोई न कोई दूसरा शरीर अवश्य प्राप्त करना पड़ता है। उसे शरीरांतर की प्राप्ति होती ही है, क्योंकि जन्मांतर का हेतु अविद्या, काम और कर्म उसके पास में विद्यमान है। यह विद्यमान है तो वो इस शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए इस शरीर से निकलेगा, उसका सूक्ष्म शरीर निकलेगा, और सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य अभिमान करके माना जाएगा कि अभी तक इस स्थूल शरीर के साथ जो रह रहा था वह जीव भी जा रहा है इस शरीर से निकल करके। तो लोकांतर के प्रति जाने के लिए, दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए कोई न कोई मार्ग चाहिए, बिना मार्ग के वह लोक लोकांतर में जा नहीं सकता। तो लोक लोकांतर में जाने के लिए शास्त्र ने मनुष्य शरीर से निकलने वाला जो जीव है उसे तीन मार्ग बताए हैं। तीन मार्गों में से किसी न किसी मार्ग से वह जाता है। उन तीन मार्गों का अलग अलग नाम है, एक है उत्तरायण मार्ग, दूसरा है दक्षिणायन मार्ग, और तीसरा है जायस्व म्रियस्व नाम का एक मार्ग। ऐसे तीन मार्ग हैं। इसमें से उत्तरायण मार्ग में जिसका प्रवेश हुआ वह चला जाता है संसार में जो सर्व विकसित लोग हैं, सर्वोत्कृष्ट लोग हैं, ब्रह्मलोक। वहां ब्रह्मलोक पहुंचाने वाले मार्ग का नाम है उत्तरायण मार्ग। स्वर्ग में कहो या पितृलोक में कहो पहुंचाने वाला मार्ग है दक्षिणायन मार्ग, और बाकी दूसरी योनियों को प्राप्त कराने वाले मार्ग का नाम है जायस्व म्रियस्व, ये तीसरा मार्ग। जिनको स्वर्गलोक जाना है उनको तो दक्षिणायन मार्ग प्राप्त होगा इस शरीर से निकलते ही, और जिनको जाना है ब्रह्मलोक उनको प्राप्त होगा उत्तरायण मार्ग, और जिनको इन दो मार्गों में से एक भी मार्ग की प्राप्ति नहीं होनी है, अविद्या काम कर्म से युक्त मनुष्य है, तो मनुष्य शरीर से निकलेगा जरूर, लेकिन इन दो मार्गों में से एक भी मार्ग को प्राप्त करने का जिसमें अधिकार नहीं है वह तीसरे मार्ग में जाएगा, जायस्व म्रियस्व मार्ग उसको प्राप्त होगा। इस प्रकार ये तीन मार्ग हैं, उनमें से दक्षिणायन मार्ग की प्राप्ति होती है मनुष्य शरीर प्राप्त करके, जिसने यहां पर रह करके जीवन भर शास्त्र ने बताए हुए कर्मों का ही अनुष्ठान किया है। शास्त्र जिन कर्मों को करने के लिए मनुष्य को मना करता है, ऐसा कर्म नहीं किया, अधर्म नहीं किया, पाप नहीं किया और पुण्य कर्म का ही अनुष्ठान करता रहा, उपासना नहीं की है, केवल कर्म किया है, शास्त्र ने बताया हुआ पाप तो किया ही नहीं, धर्म ही करता रहा, ऐसे मनुष्य को शास्त्र कहता है दक्षिणायन मार्ग की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य शरीर से, उसका मनुष्य शरीर स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर निकलेगा, तो जब निकलेगा तो दक्षिणायन मार्ग से उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। वहां इंद्रादि देवता वह बनेगा, इंद्र बने यानी स्वर्गलोक का फिर नागरिक बनेगा वो, उसमें फिर यदि उत्कृष्ट पुण्य है मनुष्य शरीर में रह करके जो सौ यज्ञ करता है वह इंद्र बनता है। अब इतना उत्कृष्ट पुण्य नहीं हुआ इंद्र बनने का, तो या तो वहां का कोई अधिकारी दूसरा देवता बनेगा, और उतना भी पुण्य नहीं है तो सामान्य नागरिक जाकर के बन जाएगा, लेकिन बनेगा स्वर्ग का नागरिक दक्षिणायन मार्ग से जाकर के। और वहां पर रहेगा कब तक? जब तक उसका पुण्य है। और गीता कहती है जब वहां रहने का निमित्तभूत पुण्य समाप्त हो जाता है तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, पुनः यहीं पर उसे वापस आना होता है कुछ समय तक रह करके। और जिसने शास्त्र ने बताया हुआ पुण्य कर्म नहीं किया और उपासना भी शास्त्र ने बताई हुई नहीं की, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करके मनुष्य शरीर में स्वाभाविक कर्म और चिंतन किया, जिसे 11वें मंत्र में मृत्यु शब्द से कहा गया था, शास्त्र निषिद्ध कर्म तथा शास्त्र निषिद्ध चिंतन किया जिसने, जो करने के लिए शास्त्र रोक रहा था वही जिसने किया है, उसे दक्षिणायन मार्ग की प्राप्ति तो होगी नहीं, स्वर्ग तो जाएगा नहीं हुआ, उसके लिए फिर मनुष्य शरीर से निकलने के बाद जायस्व म्रियस्व नाम का तीसरा मार्ग प्राप्त होता है। वह तीसरा मार्ग है बस पुनः उत्पन्न होना और मरना, जल्दी ही जल्दी इसी लोक में, यहीं पर वह उत्पन्न हुआ, यहीं मर गया, फिर यहीं पर उत्पन्न हुआ, कीट पतंग आदि बना, ये जायस्व म्रियस्व नाम का वो पापियों को, पाप कर्म करने वालों को प्राप्त होने वाला मार्ग है। और यहां पर बताया हुआ 11वें मंत्र में जो शास्त्र विहित अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान जिसने किया और साथ साथ उपासना भी की, माम अनुस्मर और युद्ध च, ये जो भगवान का गीता में उपदेश है, मन से भगवत चिंतन और शरीर इंद्रियों से शास्त्र ने बताए हुए पुण्य कर्मों का अनुष्ठान जो करता है उन्हें कहा जाता है कर्म एवं कार्य ब्रह्म की समुचित उपासना करने वाला, समुच्चय अनुष्ठाई। उसका जब प्रारब्ध मनुष्य शरीर में, उपासक शरीर में रहने का समाप्त हो जाएगा तो वह कर्म और उपासना का समुच्चय अनुष्ठान उसके फलस्वरूप उत्तरायण मार्ग से जाकर के प्राप्त कर लेगा हिरण्यगर्भ को।